पृष्ठ संख्या 94। आर्थिक प्रश्नों पर उनके विचार। समग्र रूप से अर्थ संबंधी सभी प्रश्नों पर उनके विचार कहीं एक जगह न तो संग्रहित हैं और न तो देश के संपूर्ण आर्थिक स्वरूप पर उन्होंने कोई व्यापक बात कही है, लेकिन संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर विचार करने वाली समिति को एक ज्ञापन देकर तथा समय समय पर अपने भाषणों में जो उन्होंने उल्लेख किए हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में इनकी सोच कितनी उच्च थी। अपने अध्ययन के प्रारंभिक काल में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन ब्रैकेट में रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और विकल्प ब्रैकेट क्लोज नामक एक थीसिस लिखी, जिसे 1923 में लंदन के एक प्रकाशन ने प्रकाशित किया। समाज में अपनी विनिमय के रूप में किस तरह वस्तुओं का स्थान रुपए ने लिया, इसका स्वर्ण भंडार से क्या संबंध है? यह मुद्रा स्फीति को कैसे प्रभावित करता है? क्या इस रुपए के प्रचलन का सामाजिक चलन में कोई विकल्प है? आदि प्रश्नों की बखूबी तार्किक ढंग से इस पुस्तक में विवेचना की गई है। इस पुस्तक से भी उनके आर्थिक प्रश्नों की सूझ का गहराई से उनकी सोच पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। उनकी उस समय राय थी कि रुपए के प्रचलन से अंग्रेज लोगों ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर किया। वे स्थायी रूप से रुपए के प्रचलन को प्रतिबंधित करने का सुझाव देते हुए कहते हैं कि भारत में रुपए का भंडार जमा करने से बेहतर होगा कि किसी धातु अथवा सोने के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो और यही सिक्के आयातित निर्यातित वस्तुओं के विनिमय के माध्यम बने। वे किसी भी समाज की तरक्की के लिए व्यापार को महत्वपूर्ण ढांचा मानते थे और इसे निजी संपत्ति को प्रमुख महत्व देने वाले समाज के व्यक्तिगत लाभ का समर्थ मार्ग कहते थे। व्यापार के बिना कोई समाज अपनी विशेषज्ञता से उत्पादित वस्तु अथवा अपने श्रम से उत्पादित वस्तु का अपेक्षित लाभ नहीं पा सकता। मनुष्य की महत्वाकांक्षा, इच्छा, रुचि और प्रयासों को पूरा करने के लिए मुद्रा एक सशक्त माध्यम है। कोई भी व्यापारिक समाज मूल्य के घरौंदों में रहने के लिए मजबूर है। ऐसे समाज में उत्पादित वस्तु का लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य के आधार पर ही उस समाज की विफलता और सफलता निर्धारित होती है। मुद्रा केवल व्यापार को संगत बनाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उत्पादकता को संरक्षित कर बचाए रखने और विशेषज्ञता का प्रस्फुटन करने के लिए भी जरूरी है। मुद्रा के बिना कोई भी विशेषज्ञता अपने उत्पादित सामग्री को उन तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हो सकता जिन लोगों तक पहुंचाना चाहता है। व्यापार तो उत्पादित वस्तु के लिए आवश्यक है, बिना व्यापार के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। वे मुगल जमाने में भारत की उन्नति व आर्थिक तरक्की के कायल थे। उनके अनुसार भारत का व्यापार आगे था, बैंकिंग व्यवस्था थी, आयात निर्यात में शाख थी। अंग्रेजी जमाना आने पर भी सोना चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। हिंदू राजाओं के जमाने में भी सोने के सिक्के थे। मुसलमान राजाओं ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया था। पृष्ठ संख्या 95। अकबर ने अपने जमाने में मोहरे, सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे। 1993 में बंगाल करेंसी रेगुलेशन बना था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रमुख जिलों में चांदी की करेंसी चलती थी और इस करेंसी पर सभी जिलों की मुहरें अंकित थीं। रैयत लोग सरकार को अपने उत्पादित वस्तु पर चांदी के सिक्कों के रूप में टैक्स अदा करते थे। जब भी बाजार में व्यापारी आते थे तो अपने अन्न को उनसे रुपए में बदलते थे। करेंसी का मूल्य जिला स्तर पर ही निर्धारित होता था। उनका कहना था कि भारत में विनिमय की कीमत बहुत कम थी। यहाँ तक कि एक आने में ढेर सारा सामान मिलता था। ऐसे देश में कागज की करेंसी बनाने से आम लोगों की जीवनी को प्रभाषित करने में कागज के नोट सफल नहीं होंगे। 1871 में 5 रुपए के नोटों का प्रचलन आरंभ किया गया। आम लोगों की जिंदगी तक यह नोट नहीं पहुंच सका क्योंकि 5 रुपए के नोट की उस समय कीमत काफी थी और लोगों की क्रय शक्ति बहुत कमजोर थी। इसीलिए यह नोट भी लोगों के रोजमर्रा के काम न आ सका। इसीलिए उनका मत था कि कागज के नोट की अपेक्षा दो देशों के पारस्परिक व्यापारिक आदान प्रदान के लिए उन देशों में प्रचलित धातु की बनी हुई मुद्राएं ज्यादा सक्षम माध्यम हो सकती हैं। यदि इन धातुओं की दोनों देशों में एक समान कीमत निर्धारित हो, तो मुद्रा के स्तर पर कोई देश दूसरे की लूट नहीं कर सकता। जब कभी दो देश दो तरह की धातुओं से बनी मुद्राओं का अपने देश के भीतर प्रचलन रखेंगे, तो दोनों देशों के बीच आदान प्रदान का निश्चित आधार तैयार करना कठिन होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 1873 में 1 रुपए में 10.5 स्टर्लिंग पौंड मिला करता था। बहुत दिनों तक लोग समझते थे कि दोनों देशों का करेंसी स्टैंडर्ड एक सा है। इसके बाद दोनों देशों की मुद्राओं की कीमत लगातार घटने लगी और अब इसके थमने की कोई गुंजाइश नहीं लगती। 1873 तक सोने और चांदी के दाम में 1 और 15 का रिश्ता था। उसी के बाद से यह रिश्ता में भयानक रूप से असंतुलित हुआ है। विश्व के देशों ने इसी स्खलन के बाद चांदी को स्टैंडर्ड मुद्रा विनिमय मानने से मना कर दिया। यूरोप के सभी देश एक के बाद एक, पहले जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर डेनमार्क ने चांदी को स्टैंडर्ड आधार मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश भारत का राजस्व संकलन अंग्रेजों के जाने के समय महंगा था। 1853 में सिविल सेवा सुधार अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय लोगों की सेवा में भर्ती शुरू की गई, किंतु इनका भी वेतन महंगा था। 1870 में कुछ आरक्षित सीटों पर सिविल सेवाओं में भारतीयों की नामांकन द्वारा नियुक्ति शुरू की गई। इन्हें सीमित वेतन दिया जाता था, लेकिन इससे भी प्रशासकीय व्यय कम नहीं हुआ। सरकार को सिंचाई, यातायात पर भी खर्च करना था। इसके लिए जनता से धन उगाही की गई, लेकिन भारत में गरीबी इतनी थी कि बचत नहीं कर सकते थे और सार्वजनिक बचत से धन उगाही के प्रयास विफल हुए। इसीलिए सरकार धनी देशों की ओर संसाधन के लिए मुखातिब हुई। सभी देशों में सोने के आरक्षित भंडार की ही करेंसी रखने का मापदंड माना जाता था। स्थानीय निकाय, जिला परिषद, जो सरकारी अनुदान के मोहताज थे, उनके सामने आर्थिक दबाव पैदा हुआ। वे काफी कठिनाई में पड़ गए। सरकार की आर्थिक तंगी का खुलासा इसी बात से होता है कि 2 फरवरी 1886 को भारत सरकार के सचिव ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा कि फ्रंटियर और फेमिन रेलवे को धन के अभाव में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, कॉमा, पृष्ठ संख्या 56।